ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। श्रीमद् भगवद् गीता भारत का सर्वोच्च शिरोमणि माना गया है, क्योंकि दुनिया का ये एकमात्र ग्रंथ है जिसको जिसके अंदर भगवान वाच शब्द आता है। दुनिया के बाकी जितने भी ग्रंथ है, शास्त्र है, वो सभी महान आत्माओं की वाणी है, दिव्य आत्माओं की वाणी है, लेकिन परमात्मा की वाणी नहीं है। सिर्फ श्रीमद् भगवद् गीता के अंदर ही आपको भगवान वाच ये शब्द फर्स्ट पर्सन में सुनने को मिलेगा कि जहां भगवान ने अर्जुन को बहुत सुंदर जीवन जीने की कला सिखाई, जीवन के अंदर वास्तविकता ज्ञान को कैसे अप्लाई करना है, ये सिर्फ हमें भगवद् गीता के माध्यम से ही जानने को सीखने को मिलता है। श्रीमद् भगवद् गीता को माता की उपमा दी गई कि जिस तरह एक माँ अपने बच्चे के अंदर अच्छे संस्कारों का सिंचन करती है, श्रीमद् भगवद् गीता भी वो माँ है जो हमारे अंदर श्रेष्ठ संस्कारों की, दिव्य संस्कारों का सिंचन करती है। इसीलिए भगवद् गीता को सारी दुनिया ने समझना चाहा कि आखिर भी भगवान हम आत्माओं को क्या कहना चाहते हैं। श्रीमद् भगवद् गीता में कहीं पर भी हिंदू शब्द नहीं आता है, क्योंकि ये मानवता का शास्त्र है और इसीलिए पूरी मानव जाति ने इसको समझने का प्रयत्न किया। देश विदेश के अंदर हर कोई गीता को आत्मसात करना चाहते हैं। ये भगवान के जो मधुर महावाक्य है वो हमें क्या सिखाते हैं? तो भगवद् गीता इसलिए महान है क्योंकि कहा जाता है कि महर्षि वेद व्यास जी निमित्त बने उस भगवान के महावाक्य को हम तक पहुंचाने के लिए। वो कई बार समाधि अवस्था में बैठते थे और जब समाधि अवस्था में बैठते थे तो ट्रांस की अवस्था में चले जाते थे और उस ट्रांस में उन्हें दिव्य अनुभव होते थे। इसी प्रकार का एक समय था जब वो समाधि अवस्था में बैठे और ध्यान मग्न हुए तो उस समय उन्हें ये गीता ज्ञान की प्राप्ति हुई। इतना अद्भुत महसूस हुआ कि उन्हें ये लगा कि ये ज्ञान तक मनुष्य तक जरूर पहुंचाना चाहिए। इसीलिए वो लिखने का प्रयत्न करते हैं, परंतु कहा जाता है कि ध्यान की जो बातें हैं कई चीजें उसमें से लुप्त हो जाती है तो लिख नहीं पाए। तब वो भगवान से कहते हैं कि हे प्रभु, आप इतना ऊंचा ज्ञान मुझे दे रहे हो, परंतु अगर उसको मैं मनुष्य तक पहुंचा ही नहीं सका तो क्या फायदा होगा। तब उन्हें संकेत मिला कि आप गणेश जी का आवाहन करो और इसीलिए गणेश जी का आवाहन करते हुए महाभारत के आदि पर्व के 77वें श्लोक में वो निवेदन करते हैं कि हे गणनायक, आप मेरे लेखक बनो। ये ग्रंथ में अपने मन की अति उच्च अवस्था समाधि अवस्था में प्राप्त ज्ञान से प्रकट कर रहा जो कि मेरी मन की ही कल्पना है। अब ज्ञान जो उसे प्राप्त हुआ उसको उन्होंने जो प्रेजेंट किया है अपनी मन की कल्पनाओं के माध्यम से। भावार्थ क्या है? क्या जैसे कोई छोटा बच्चा हो और हमें उसको कोई ज्ञान की बात सिखानी हो, ज्ञान बहुत सिंपल उसको हम सिखाते हैं, बेटा सच बोलना चाहिए, ज्ञान इतना ही है। लेकिन अगर रोज सुबह उठ करके मैं उसका उपदेश दूं तो शायद उसके मर्म को वो समझ नहीं पाएगा। लेकिन उस ज्ञान की बात को मैं अपनी मन की कल्पना से एक कहानी का निर्माण करती हूं जिसमें एक सच का पात्र लेती हूं, एक झूठ का पात्र लेती हूं, और फिर कैसे सच के सामने अनेक चुनौतियां आती है, अनेक बातें आती है, लेकिन फिर भी अगर वो उस बात के ऊपर दृढ़ रहा, सच्चाई के मार्ग पर आगे बढ़ता रहा तो अंत में उसकी विजय निश्चित है। ये बात उसको मैं समझाती हूं। और जीवन में जब कभी ऐसा मोड़ आया कि जब उसको चुनाव करना हो कि सच बोलूं या झूठ बोलूं, और उस समय उसको वो कहानी याद आ जाए और उस कहानी से प्रेरणा प्राप्त करके वो अंदर में फैसला करता है, चाहे कितनी भी चुनौती आए लेकिन मुझे ये सच की राह जरूर अपनानी है। अनेक चुनौती आती है, अनेक परिस्थितियां समस्याएं भी खड़ी होती है, लेकिन फिर भी जब वो उस मार्ग से हटता नहीं है, मेंटली प्रिपेयर्ड रहता है इन सब बातों के लिए, और जब अंत में उसकी विजयी होती है तो क्या अनुभव करता है, कितना सुंदर अनुभव करता है विजय का। ठीक इसी तरह महर्षि वेद व्यास जी ने भी जो ज्ञान का मक्खन प्राप्त किया उसने सोचा कि अगर सीधा उपदेश दिया जाएगा तो शायद मनुष्य समझ नहीं पाएंगे, आत्मसात कर नहीं पाएंगे, इसलिए उसने अपनी मन की कल्पना से कहानी का निर्माण किया जिसको कहा महाभारत की कथा। और उस कथा के अंदर इस ज्ञान का समावेश किया ताकि मनुष्य उस कहानी को, उस कथा को पढ़ने के बाद या सुनने के बाद उसमें से प्रेरणा प्राप्त करे कि हमें भी अपने जीवन को कैसे चलाना है। बातें अनेक आएंगी, जीवन कभी कभी युद्ध का स्थान भी बन जाएगा, युद्ध स्थल बन जाएगा, कुरुक्षेत्र बन जाएगा, लेकिन फिर भी उस ज्ञान के एप्लीकेशन से आगे बढ़ते जाएंगे तो अंत में कैसे हर युद्ध विजयी में बदल जाएगा। ये उस बात को समझाने का प्रयत्न करते हैं और इसीलिए एक ही कथा के अंदर अनेक कथाएं समाई हुई है। एक अर्जुन की मनोदशा नहीं है कि भाई अर्जुन जैसा एक वीर योद्धा था जो महाभारत युद्ध के मैदान में खड़ा है और अचानक दिल शिकस्त हो जाता है और वो भगवान से विनती करता है कि मुझे ये युद्ध नहीं करना है, शस्त्र छोड़ देता है। और उस समय भगवान उसको ये गीता का ज्ञान देते हैं, समझाते हैं और ये मोटिवेट हो जाता है और युद्ध के लिए तैयार हो जाता है। यानी गीता ज्ञान में वो ताकत है, वो शक्ति है कि कैसा भी इंसान दिल शिकस्त हो, हिम्मत हार गया हो, नाउम्मीद हो गया हो, निराश हो गया हो, तनाव ग्रसित हो या डिप्रेशन का शिकार अवसाद में चला गया हो, लेकिन गीता ज्ञान में वो ताकत है जो उस अवसाद वाले को, तनावग्रस्त को भी वो हिम्मत प्रदान करके उसको जीवन के हर युद्ध के लिए सक्षम कर देता है, समर्थ बना देता है, वो ताकत है। तो इसलिए कहा कि अर्जुन, कोई पांडव और कौरव की बात नहीं है, लेकिन आज कुरुक्षेत्र माना कर्म क्षेत्र पर हर इंसान युद्ध कर रहा है, कोई अपने आप से लड़ रहा है, कोई दूसरों से लड़ रहा है, कोई हालातों से लड़ रहा है, कोई परिस्थितियों से लड़ रहा है, हर कोई लड़ रहा है। और जीवन में कभी कभी ऐसे मोड़ भी आते हैं जब व्यक्ति भी हिम्मतहीन, निराश, उदास, तनावग्रस्त हो जाता है, और उस वक्त शायद वो अपनी प्रार्थना में भगवान से यही कहता है कि हे प्रभु, ये युद्ध कब तक, अब मैं और आगे लड़ना नहीं चाहता हूं, थक गया हूं। ऐसा वक्त जब आ जाता है तो उस वक्त वो गीता ज्ञान को आत्मसात अगर करे तो उनके अंदर फिर से वो हिम्मत आ जाती है और हर युद्ध में विजयी हो जाता है। तो इसलिए आज का इंसान हर एक अर्जुन है जो अर्जन करता है उस गीता ज्ञान को और विजयी बनता है। दूसरा, इसी कथा के अंदर, महाभारत की कथा के अंदर ही एक पारिवारिक कथा है जहां कौरव और पांडव भाई भाई थे, एक ही परिवार के सदस्य थे, मतभेद हो गया। आज की दुनिया के अंदर भाई भाई के बीच में मतभेद किस बात को लेकर होता है, किस बात को लेकर होता है? जमीन और जायदाद, जमीन और जायदाद को लेकर होता है। ठीक इसी तरह पांडवों ने भी 5 गांव मांगे थे और दुर्योधन ने कहा 5 गांव तो क्या, एक सुई जितनी जगह भी देने के लिए तैयार नहीं। ऐसे समय पर किस तरह से उस पारिवारिक परिस्थिति को हैंडल करना है, ये बात भी भगवत गीता समाधान देती है। उस पारिवारिक झगड़ों का भी समाधान भगवत गीता है। इतना ही नहीं, लेकिन एक सामाजिक कथा भी है। आज के समाज के अंदर भी शकुनी जैसे पात्र देखने को मिलते हैं या नहीं मिलते हैं? है, महाभारत में तो एक ही शकुनी, एग्जाम्पल तो एक का ही दिया जाता है। आज हर घर में शकुनी है, हर एक के जीवन में शकुनी है। कौन है शकुनी? शकुनी किस में माहिर था? शकुनी माहिर था जुए के खेल में, और कहा जाता कि पासे भी उसके मन की बात समझते थे और हर बार वही विजयी होते थे, है ना? तो आज के युग का शकुनी कौन है? कौन है? मोबाइल। मोबाइल शकुनी है। आप कोई भी कॉल करो, कॉल के बाद एक ऐड आती है, रमी खेलो। जुआ, जुआ किसमें है? हाँ, कितने जुए के खेल मोबाइल में होते हैं और कितने लोगों को प्रलोभन में ले आता है। और जीतता कौन है? शकुनी ही। कोई जीता है आजकल, आज की दुनिया के अंदर कोई जीता है रमी के खेल खेल करके, या दूसरे जो भी है मालूम नहीं और कौन से हैं, है ना? कितने खेल है जुए के, कितना लोगों को प्रलोभन में ले आते हैं। और शकुनी की टारगेट पर भी कौन था? धृतराष्ट्र नहीं था, गांधारी नहीं थी। आज का यूथ, यूथ के दिमाग को परिवर्तन करने के लिए या विकृत करने के लिए शकुनी बैठा था, है ना? तो आज ये मोबाइल ने कितनों का जीवन खत्म किया है। कितने बुजुर्ग लोग नहीं खेलते हैं, बुजुर्ग टारगेट पर नहीं है, युवा टारगेट पर है। और बच्चे कैसे कैसे खेल उसमें है और प्रलोभन जो दे रहा है ना, किस किस के द्वारा ऐड दिला रहा है। तो इसीलिए कहा कि आज जो यूथ है वो राह भटक रहे हैं, जल्दी पैसा कमाना है सोच करके राह भटक रहे हैं, नहीं भटक रहे हैं, घर तबाह हो रहे हैं। अरे छोटे बच्चे के हाथ में से भी मोबाइल खींच के तो देखो क्या होता है। हाँ, खाना नहीं दोगे चलेगा, लेकिन मोबाइल जरूर चाहिए, शकुनी का संग जरूर चाहिए, है ना? ये शकुनी का संग आज घर घर में है। कितना माँ बाप परेशान हो गए हैं। किसी ने अभी सुनाया थोड़े दिनों पहले ही कि कोरोना के काल में जब सब कुछ ऑनलाइन हो गया था, आजकल तो हर एक के बैंक अकाउंट भी ऑनलाइन हो जा, ये मोबाइल में ही होते हैं। और मनुष्य के, ये यूथ के कितने विकृत दिमाग हो रहे हैं, जो ऐसी विद्या पहले सीखेंगे कैसे बैंक अकाउंट हैक करना है, है ना? कैसे पैसे को हासिल करना है। तो इसी तरह ये खेलों में भी, तो कहा कि एक बच्चे को, एक मिडिल क्लास फैमिली का व्यक्ति था, उसने अपनी बेटी की शादी के लिए धीरे 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 करके पैसे जुटाए थे, 40 लाख बैंक में थे उसके। अब बच्चे को पढ़ाई के लिए, भाई ऑनलाइन पढ़ाई है तो मोबाइल देना पड़ा। अब उसी के बैंक अकाउंट, और बच्चा, आजकल तो बच्चे होशियार होते हैं, कई बार माता पिता भी बच्चे से करा देते हैं ऑनलाइन, वो सब कुछ जानते, पासवर्ड भी जानते, सब कुछ जानते हैं। तो इस बच्चे को भी लगा कि मैं और पैसा अंदर बढ़ा दूं, ये सोच करके उसने पासवर्ड डाल दिया, खेलने में लगा। धीरे 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 करके वो सारा पैसा खत्म हो गया। जब बैंक अकाउंट खाली हो गया, उस बच्चे को होश आया कि अरे पिताजी ने तो बहन की शादी के लिए ये जोड़ा था, अब क्या कहूं मैं। रात में चिट्ठी लिखी कि पिताजी मुझे माफ करना, मैंने 40 लाख ये जुए के खेल में खत्म कर दिए हैं। मैंने सोचा था कि मैं आपको मदद करूं पैसा कमा करके, लेकिन अब मैं आपका सामना नहीं कर सकता हूं, इसलिए मैं अपने जीवन को अंत कर देता हूं। चला गया। एक ही बेटा था, वो भी चला गया, पैसा भी चला गया। ये है शकुनी। इसीलिए कहा जाता है कि दुर्योधन का नाम सुयोधन था। शास्त्रों में भी दिखाया है कि दुर्योधन का नाम सुयोधन था, लेकिन सुयोधन को दुर्योधन किसने बनाया? शकुनी ने, है ना? तो इसीलिए कहा कि ये आज के समाज की स्थिति है कि हर एक नवयुवक किस तरह से इस शकुनी की जाल में फंसते जाते हैं। कोई साइबर क्राइम में लग गया है, तो कोई हैकिंग में लग गया है, कोई किस में लग गया है, कोई जुए के खेल में लग गया है, कोई ड्रग्स में लग गया है, कहां कहां बुद्धि चली गई है, कैसी हालतें हो गई है ना। तो एक समाज की कथा भी है जिसको जागृत करने का प्रयत्न महर्षि वेद व्यास जी ने किया। आज से 5000 साल पूर्व एक कथा के माध्यम से उसने जागृत करना चाहा, लेकिन आज के लोग क्या समझते, अरे वो जुआ कौन खेल रहा है, ये नहीं याद आता है कि ये जुए की बात कही है, ये रिलेट नहीं कर पाते हैं वर्तमान जीवन के साथ। और जब रिलेट नहीं कर पाते हैं इसीलिए तो इस दलदल में फंसते जाते हैं और पता ही नहीं चलता है। एक सामाजिक कथा भी है, पारिवारिक कथा भी है, तो एक राष्ट्रीय कथा भी है। कितना सुंदर, कहा जाता है कि आज से 500 साल पूर्व नॉस्ट्रोडेमस होके गए, जिन्होंने 500 साल पूर्व वर्तमान समय को एक गोले में देखा और उसके बारे में लिखा। लेकिन हमारे ऋषि ऐसे थे भारत में जिन्होंने 5000 साल पहले वर्तमान को देखा था समाधि अवस्था में, और उन्होंने भी जागृत करने का प्रयत्न किया एक कथा के माध्यम से, जिस कथा को पढ़ते भी है सुनते भी है लेकिन फिर भी जागृति नहीं आई, है ना, फिर भी जागृति नहीं आई। तो इसीलिए उन्होंने ये बात मनुष्य को जागृत करने के लिए कही थी। एक एक नाम जो चुने हैं, बहुत सुंदर नाम चुने हैं, तो राष्ट्रीय कथा भी है जहां धृतराष्ट्र, जिस राष्ट्र के अंदर धृत भावना भरी हुई हो, और राज्य करना कौन चाहता है, उस कुर्सी पर बैठना कौन चाहता है, नेत्रहीन। ये आंखों से नेत्रहीन नहीं था लेकिन महत्वाकांक्षाओं में अंधा था, अभिमान में अंधा, मोह में अंधा। ऐसे लोग जो नेत्रहीन होते हैं वो राज्य करना चाहते हैं, है ना। आज दुनिया के अंदर कहीं भी देख लो, कोई भी राष्ट्र को देख लो, भारत की बात छोड़ो, कोई भी राष्ट्र को देख लो, कौन राज्य कर रहा है, चाहे कोरिया देखो, चाइना देखो, अमेरिका देखो, कौन राज्य कर रहा है। जो महत्वाकांक्षाओं में अंधे हैं, जो अभिमान में अंधे हैं, वो ही तो राज्य करना चाहते हैं और वो उस कुर्सी से हटना नहीं चाहते हैं, है ना। तो इसीलिए कहा धृतराष्ट्र, कि जब राष्ट्र के अंदर भी धृत भावना हड़प कर बैठती है और जहां मानसिक अंधत्व और आत्मिक अंधत्व आ जाता है, वो बहुत ही भयानक होता है उस राष्ट्र के लिए भी। तो इसीलिए ऐसे समय पर ही परमात्मा को भी आना ही पड़ता है। और साथ ही साथ वैश्विक कथा भी है, आज सारे विश्व के अंदर हर मनुष्य आत्मा भी कहां जा रहा है, किस ओर बढ़ रहा है, विकृतियों की ओर आगे बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे समय पर ही परमात्मा को आकर के मनुष्य आत्मा को भूला हुआ वो पाठ फिर से पढ़ाना पड़ता है कि तुम देह नहीं हो, एक चैतन्य शक्ति आत्मा हो। और स्वयं को आत्म जान करके उस पिता परमात्मा को याद करो, ताकि उस परमात्मा से सहजता से शक्ति प्राप्त हो सके। तो एक कथा के अंदर कितने स्तर की कथाएं आ गई, व्यक्तिगत स्तर की, पारिवारिक स्तर की, सामाजिक स्तर की, राष्ट्र के स्तर की और वैश्विक स्तर की। सभी कथा एक ही कथा के अंदर है, और इसीलिए सारी कथाओं को अगर देखा जाए तो वर्तमान समय के साथ उसका तैलुक संबंध कितना है, 100% है। तो इसलिए कहा पांडव भी है कौरव भी है, पांडव 5 दिखाए कौरव 100 दिखाए। आज के युग में परसेंटेज कितने पर निकलता है, 100 पर निकलता है ना। तो सारी दुनिया को अगर 100% लिया जाए तो आज की दुनिया में पांडव माना जो भगवान से प्रीत करने वाले कितने परसेंटेज होंगे, ओनली 5%। भगवान से प्रीत करने वाले और भगवान से विपरीत कितने हैं या? तो इसीलिए कहा पांडव भी है तो कौरव भी है। 5 पांडव में भी कौन कौन थे, तो पहला नंबर था युधिष्ठिर, के युद्ध जैसी परिस्थिति में भी स्थिर बुद्धि वाला। आज की दुनिया में अगर देखा जाए, जहां कहा जाता है इतने वेवरिंग माइंड वाले लोग हैं, ऐसे वेवरिंग माइंड वाली दुनिया के अंदर स्थिर बुद्धि वाले कितने परसेंटेज होंगे, ओनली 1%, सिर्फ 1%, है ना। दूसरा नंबर था भीम, शक्तिशाली आत्मा, है ना, आत्मशक्ति से युक्त आत्मा, विल पावर। आज की दुनिया में विल पावर तो छोड़ो, सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म होता जा रहा है। छोटे बच्चों के जीवन में भी सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं रहता है। ऐसी दुनिया में जहां सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म हो रहा हो, ऐसी दुनिया में स्ट्रांग विल पावर वाले कितने परसेंटेज होंगे, ओनली 1%। तीसरा नंबर अर्जुन, अर्जन करना जानता है, अच्छी बातों को ग्रहण करना जानता है। आज के युग में जहां चारों ओर नेगेटिविटी है, ऐसे नेगेटिविटी वाली दुनिया के अंदर पॉजिटिव बातों को ग्रहण करने वाले कितने परसेंटेज होंगे, ओनली 1%। चौथा नंबर है नकुल, नियमों पर चलने वाला, सिद्धांतों पर जीवन जीने वाला। आज की दुनिया में न उठने का, न बैठने का, न चलने का, न खाने का, न पीने का कोई नियम सिद्धांत ही नहीं रहा। ऐसी दुनिया में भी कोई नियम पर चलने वाले लोग हैं, कितने परसेंटेज, ओनली 1%। और पांचवा है सहदेव, जो सहयोग देना जानते हैं अच्छे कार्य में। आज की दुनिया में अच्छे कार्य में सहयोग देने वाले तो बहुत हैं, लेकिन सहयोग देने के बाद एक अपेक्षा रहती है कि मेरी नेम प्लेट जरूर लगनी चाहिए, मेरा सम्मान जरूर होना चाहिए, लोगों को पता चलना चाहिए मैंने इतना सहयोग दिया है। लेकिन सहदेव ने बिना किसी अपेक्षा के सहयोग दिया, तो आज की दुनिया में बिना किसी अपेक्षा के सहयोग देने वाले कितने परसेंटेज, ओनली 1%। ये थे 5 पांडव, है ना, ये थे 5 पांडव। और कर्तव्य रूपी कुंती, है ना। तो इसीलिए कहा कि ये 5 पांडव और बाकी थे 100 कौरव। आप सभी कौन है, क्या समझते हो अपने आप को? पांडव तो है तभी तो यहां बैठे हैं, गीता ज्ञान है ही पांडवों के लिए। जो पांडव नहीं होंगे ना वो यहां बैठे नहीं होंगे, बाहर घूम रहे होंगे, है ना। गीता ज्ञान जिसको नहीं सुनना है वो थोड़ी बैठ सकते हैं। तो इसलिए पांडव तो है, लेकिन ये पांचों में कौन सा पांडव समझते हो? जो समझते हम युधिष्ठिर है, जरा हाथ तो खड़ा करो युधिष्ठिर, स्थिर बुद्धि वाले, स्टेबल माइंड, हाथ खड़ा करो। अच्छा दो चार ही है, थोड़े हैं। जो समझते हम भीम है, स्ट्रांग विल पावर, आर्य पार। अच्छा जो समझते हम अर्जुन है, नेगेटिव बातों को छोड़ पॉजिटिव बातों को ग्रहण करने वाले। अच्छा जो समझते हम नकुल है, नियमों पर चलने वाले, सिद्धांतों पर जीवन जीने वाले। अच्छा और जो समझते हम सहदेव है, अच्छे कार्य में अपना सहयोग बिना अपेक्षा के देते रहते। अच्छा इसमें भी ज्यादा है, लेकिन यहां मुझे छह प्रकार के लोग दिखाई दिए। जिसने किसी में हाथ नहीं उठाया वो कौन है? क्या कहेंगे? कौरव तो है नहीं, लेकिन वो अभी तक डिसाइड नहीं कर पाए कि मैं कौन सा पांडव हूं, है? तो आज इस मन से जो हम देख रहे हैं यहां बैठा हुआ हर कोई अर्जुन है, हर कोई अर्जुन है, अच्छी बातों को ग्रहण करने वाले हैं। तो इसीलिए ऐसे अर्जुन बनने की सबको बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक। दूसरी ओर कौरव है, धृतराष्ट्र जो कहा नेत्रहीन, जो महत्वाकांक्षाओं में, अभिमान में, मोह में, भूमि के अभिमान में अंधा है, लालच में, कुर्सी का मोह छूट नहीं सकता है, तो उसके कारण उसको नेत्रहीन बताया। और गांधारी जो देखना चाहते हुए भी देखना नहीं चाहती थी, देखते हुए भी देखना नहीं चाहती थी, आंखों पर पट्टी लगा दिया। जब मैं गीता का और महाभारत का अध्ययन कर रही थी तो मेरे मन में यही सवाल आया कि अगर किसी का पति किसी कारणवश नेत्रहीन हो जाए तो उसकी पत्नी को उसका सहारा बनना चाहिए या खुद भी आंखों पर पट्टी बांध लेनी चाहिए? विवेक ये कहता है सहारा बनना चाहिए। ये गांधारी कैसी पत्नी थी जो सहारा बनने के बजाय खुद भी आंखों पर पट्टी बांध लिया। लेकिन तब महसूस हुआ कि महर्षि वेद व्यास जी ने जो देखा था वर्तमान समय को, सचमुच ऐसा है कि अगर कोई पति गलत रास्ते पर जा रहा है, पत्नी जानते हुए समझते हुए भी उसको रोकने का प्रयत्न नहीं करती है, उस वक्त वो भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेती है, उसको सही न्याय करने में सहयोगी नहीं बनती है, लेकिन खुद भी उस राह की ओर चल पड़ती है, तो ऐसी गांधारी है या नहीं है समाज के अंदर? बहुत है। और फिर इंटरनेट पर जाकर के मैंने कौरवों के नामों की लिस्ट निकाली, बड़ा आश्चर्य था, मेजॉरिटी कौरवों के नामों का आरंभ दू से हो रहा था, मेजॉरिटी। दू माना दुष्टता, दू माना दूसरों को दुख देना जानते हैं, है ना। तो दुर्योधन जो धन का दुरुपयोग करने वाला, खाली स्थूल धन की बात नहीं थी, लेकिन जो आज हमारे ह्यूमन रिसोर्स है, संकल्पों का धन, वाणी का धन, शक्ति का धन, हर एक धन का दुरुपयोग करना आज के समाज के अंदर क्या हो रहा है? तभी का आज का यूथ किस ओर जा रहा है? अपने धन का दुरुपयोग कर रहा है या नहीं कर रहा है? अपनी शक्ति का, बुद्धि का दुरुपयोग हो रहा है नहीं हो रहा है? हो रहा है। दुशासन करने वाले लोग है या नहीं है? बहुत है दुशासन करने वाले समाज के अंदर। एक एक इंद्रियां दुष्टता को लिए हुए। महर्षि वेद व्यास जी ने इतने एक्यूरेट नाम दिया। आज भले दुनिया के अंदर कोई अपने बच्चे का नाम जो है दू से आरंभ नहीं करता है, वह सुंदर सुंदर नाम रखते हैं, लेकिन कैरेक्टर वाइज ऐसे बच्चे जरूर है जो दुख देना जानते हैं, जो दुष्टतापूर्ण व्यवहार करते, अरे अपने मां बाप के साथ भी दुष्टतापूर्ण व्यवहार करते हैं, दुर्मुख। नाम कितने एक्यूरेट है, दुर्मुख, जिसका मुख से हमेशा बुरे वचन निकलता है, दुर्विमोचन, जिसकी दृष्टि ही बुराई वाली है, दुष्कर्ण, दुर्बुद्धि, एक एक इंद्रिया, और लास्ट में एक बहन वो भी दुशीला। शील यानी चरित्र, जिसका चरित्र ही दुष्टता वाला था। जब एक कार्यक्रम में मैं ये बात बता रही थी तो एक बहन आकर मुझे कहने लगे, बहन जी बहुत एक्यूरेट बताया। मैंने कहा क्या? तो कहा आज दुशीलाएं बहुत है। मैंने कहा कहां है? मेरे को भी देखना था कहां है भाई, मैं भी देखूं। तो कहा नहीं दीदी, आजकल के टीवी सीरियल जितनी भी आती है ना, तो उस सीरियल के अंदर जो परिवार के अंदर फूट डालने वाली होती है ना, वो दुशीलाएं ही होती है। तो प्रैक्टिकल में होगी तभी तो सीरियल बनी कि नहीं बनी। तो नारी की भूमिका क्या बताई गई सीरियलों में? घरों में फूट डालने वाली, घर तोड़ने वाली, कई लोगों को भड़काने वाली, तो ये दुशीला नहीं तो क्या है? तो प्रैक्टिकल में होता होगा तभी तो सीरियल बनी, है ना? है ऐसी दुशीलाएं कि नहीं है? बहुत है। तो कौरव भी यहां है, पांडव भी यहां है, युद्ध का मैदान भी है ना? कुरुक्षेत्र यानी कर्म क्षेत्र। कर्म में ही तो आज अच्छाई और बुराई का युद्ध चलता रहता है, और इस कुरुक्षेत्र के अंदर ही भगवान किसके साथ है? भगवान जब इस संसार में आते तो भगवान किसके साथ है? कितना सुंदर एक दृष्टांत दिया है महाभारत के अंदर कि पांडवों में से अर्जुन और दुर्योधन दोनों भगवान से मदद मांगने के लिए गए, तो दिखाया कि उस समय भगवान लेटे हुए थे। तो दुर्योधन सिरहाने बैठ गया यही सोच करके कि भगवान आंख खोले सबसे पहले मुझे देखे, और दुर्योधन अर्जुन जो है पैरों के पास खड़े हो गए, और भगवान नेचुरल है आंख खुलेगी तो सामने वाले को ही पहले देखेंगे। अर्जुन को देखकर पूछा कि भाई अर्जुन तुम कब आया? तो दुर्योधन ने क्या कहा, मैं पहले आया हूं मुझे मांगने के लिए कहा जाए? आज की दुनिया में यही तो होता है, दादागिरी तो चलती है सब जगह है। तो अर्जुन ने कहा भाई तू मांग ले। तो भगवान ने कहा एक तरफ मैं हूं, एक तरफ मेरी अक्षौणी की सेना है, क्या चाहिए तुझे, क्या चाहिए? और एक वाक्य वहां जोड़ दिया, जिस तरफ मैं रहूंगा मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं सिर्फ सारथी बनकर के रथ चलाऊंगा। अब दुर्योधन को सिखा सिखा के भेजा था शकुनी ने कि तुम उसी को मांग लेना, लेकिन जब भगवान ने कहा मैं सिर्फ सारथी बनकर रथ चलाऊंगा, तो दुर्योधन ने क्या सोचा, फिर मांग कर फायदा क्या, इसे तो मैं अक्षौणी की सेना ना ले लूं। आज की दुनिया में भी मोबाइल पर गूगल सिखा सिखा करके लोगों को तैयार करने का प्रयत्न करता है, लेकिन फिर भी कई लोग क्या सोचते हैं, अरे ये तो कुछ भी बोलता रहता है ना? अरे गूगल के आजकल तो गूगल को पूछो, गूगल क्या करना चाहिए सब कुछ बताना चालू कर देगा। गूगल के साथ एक और आया है अलेक्सा, अलेक्सा करते रहते हैं है? उसको पूछो तो वो भी बताना चालू कर देते हैं, है ना? तो उसको सिखा कर भेजा था, तुम उसी को मांग लेना। लेकिन फिर भी उसने अपनी मत चलाई, यही सोच करके कि भगवान अगर सारथी बनने वाला, क्योंकि वो भगवान की शक्ति को और क्षमता को जानता नहीं था। गूगल भी एलेक्सा भी ईश्वर की शक्ति को नहीं पहचान सकता, इसलिए वो इस दुनिया की बातें बता सकता है, ईश्वर की शक्ति और क्षमता के विषय में, आत्मा के विषय में वो नहीं बता सकता है। बहुत सुंदर अभी किसी ने बताया कि एक रोबोट तैयार किया, पूरा एक मनुष्य जैसा, आपके साथ बात करेंगे, आपको आप जो प्रश्न पूछेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से वो हर बात का प्रश्न का जवाब एक्यूरेट देंगे। फिर उसको पूछा तो तुम्हारे में और हमारे में अंतर क्या है, तब भी उसने कहा, उस रोबोट ने कहा, जो आपके पास है मेरे पास नहीं है। कहा कौन सी बात? कहा आत्मा, तुम्हारे अंदर आत्मा है, मेरे अंदर आत्मा नहीं है, है ना? तो इसीलिए कहा कि दुर्योधन ने भी वो भगवान की शक्ति को नहीं पहचान सका, ईश्वर की ताकत कितनी होती है वो नहीं समझ सका, और इसलिए उसने इंसानी ताकत पर विश्वास रखा कि मुझे अक्षौणी की सेना दे दो, मैं उसी से विजयी हो जाऊं। और अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान आप हो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि वो भगवान की शक्ति और क्षमता को जानता था कि भगवान अगर युद्ध न भी करे तो भी ऐसा गाइडेंस दे सकता है जो हमें विजयी बना सकता है, क्योंकि युद्ध के मैदान में आवश्यकता है प्रेजेंस ऑफ माइंड की, चीज वस्तुओं की नहीं, समय सूचकता की आवश्यकता है, और वो समय सूचकता सिर्फ भगवान ही टच कर सकता है, वो आज के मनुष्य किसी को टच नहीं कर सकता है। तो इसलिए भगवान की शक्ति और क्षमता को जानने के कारण क्या था, का पैरों के पास खड़ा था, इसीलिए जानता था। पैरों के पास खड़ा होना माना नम्रता का प्रतीक, और सिरहाने बैठना माना अभिमान का प्रतीक। जो इंसान अपने अभिमान में चलते हैं वो ईश्वर की शक्ति को नहीं पहचान सकते हैं, और इसीलिए वो हर बात में मुंह की खाते हैं। और अर्जुन जो निरुत्साहित अगर हो गया तो भी भगवान को सारथी जहां बनाया वहां भगवान ने उसको मोटिवेट कर दिया और युद्ध में विजयी बना दिया। तो जीवन के अंदर निर्माणता, नम्रता आज के युग में बहुत आवश्यक है, अगर खेल को, जीवन रूपी खेल में जीत प्राप्त करनी है तो बहुत जरूरी है। अभिमान में चलेंगे तो हर जगह मुंह की खानी पड़ेगी, अक्षौणी की सेना होने के बावजूद भी मुंह की खानी पड़ेगी, है ना? तो इसलिए आवश्यकता है निर्माणता को धारण करें, आध्यात्मिकता को, ईश्वर को अपना सारथी बना ले। तो समय सूचकता, समय पर एक्यूरेट गाइडेंस हमें प्राप्त होती रहेगी, मन शांत भी रहेगा और मन एक्टिव भी रहेगा, शांत होते हुए भी एक्टिव रहेगा। यही तो आज इंसान को चाहिए कि जीवन में शांति भी हो और एकदम एक्टिव भी रहे हर बात में, और समय पर सही डिसीजन भी लेवे, यही तो चाहना है। तो वर्तमान समय के साथ कितना तालमेल रखता है कि महर्षि वेद व्यास जी ने मनुष्य को जीवन जीने की कला में यही समझाना चाहा, आध्यात्मिकता को सारथी बनाओ। भगवान को सारथी बनाना माना उसके ज्ञान को सारथी बनाना, उसकी प्रज्ञा को लेकर के जीवन में चलना, लेकिन चलते हुए निर्माण रहना और अपने मन को शांत रखना मेडिटेशन के ध्यान के माध्यम से, और अपनी बुद्धि को इतना एक्टिव रखना जो सही समय पर सही डिसीजन ले सके। कितनी गहरी बात जीवन जीने की कला में हमें सिखाई है भगवान ने गीता के माध्यम से, लेकिन कभी कोई उसको आत्मसात नहीं कर पाया क्योंकि समझा ही नहीं। कितनी बार किताब पढ़ी होगी लेकिन समझ में ही नहीं आया। तो इसीलिए गीता में जैसे प्रथम अध्याय तो पूर्ण विषाद का है, अर्जुन के मन के अंदर अनेक प्रकार की भावनाएं उत्पन्न हो रही है, युद्ध करूं या न करूं ये अंतर द्वंद चल रहा है, और फाइनल उसने कर दिया कि मुझे नहीं करना है, युद्ध नहीं करना है ना, और इसलिए शस्त्र छोड़ दिया। अब उस समय क्या कहेंगे जब भगवान को उसने कहा कि मेरा रथ बीच में ले जाओ, मैं दोनों सेनाओं को अच्छी तरह से देखना चाहता हूं। देखने के बाद इतना निरुत्साहित हो गया, इतना वीर योद्धा, उसने शस्त्र छोड़ दिए, क्या हुआ उसको, क्या कहेंगे, क्या हुआ? तो कई लोग हमें समझाते हैं उसका मोह जागृत हो गया, उसने भीष्म पितामह को देखा, गुरु द्रोणाचार्य को देखा, कृपाचार्य को देखा, अपने मामा चाचा सबको देखा, तो उसको लगा कि इन सबको मैं कैसे मारूं, मोह जागृत हो गया और इसलिए उसने मना कर दिया। सोचने की बात तो ये है, प्रैक्टिकल अगर हम सोचे कि जिन बड़ों ने भीष्म पितामह हो, गुरु द्रोणाचार्य हो, मामा चाचा काका जो भी हो, उन सभी ने बचपन से ही अगर पांडवों के साथ अन्याय ही किया, तो जिसने अन्याय किया क्या उसके प्रति कभी मोह जागृत हो सकता है? हो ही नहीं सकता है। तो फिर अर्जुन की यह हालत क्यों हो गई? और भगवान उसको फिर ज्ञान देना शुरू करते हैं। मैं जब कुरुक्षेत्र गई थी तो मैंने वहां पूछा कि ये 18 अध्याय 700 श्लोक सुनाने में भगवान को कितना समय लगा, तो मुझे बताया गया कि कई ओपिनियंस है, कोई कहता है 1.25 घंटा लगा, कोई कहता है कि उससे कम समय लगा, कोई कहते उससे ज्यादा समय लगा। मैंने कहा चलो भाई 1.25 घंटा ही ले लो, लेकिन अगर युद्ध के मैदान के बीच में जहां सेनाएं एकदम आमने सामने खड़ी हो लड़ने के लिए, और वहां भगवान 1.25 घंटा ज्ञान सुनाने लगे, तो 1.25 घंटे तक दुर्योधन ने क्या किया? तो भाई तो देखता रह गया मेरा चेहरा, कहा उसके बारे में तो कुछ लिखा ही नहीं है। फिर मेरे को दूसरे भाई ने कहा नहीं, उस समय जो है ना समय को फ्रीज कर दिया था भगवान ने, फ्रीज कर दिया था। अरे समय फ्रीज कहां हुआ था? दुर्योधन जब तक भगवान ज्ञान दे रहे थे तब तक कहा जाता है, वो भीष्म पितामह के पास जाता है, सभी को बोलता है कि भीष्म पितामह की रक्षा हमें अंत तक करनी है, सारा युद्ध का वो फाइनल ये कर रहा था वो, तो कौन कहां खड़ा होगा, कौन कहां क्या करेगा, फ्रीज कहां हुआ था टाइम? तो फिर अर्जुन की ऐसी मनोदशा क्यों हुई? मोह तो जागृत हुआ लेकिन उन बड़ों के प्रति नहीं, जिन्होंने अन्याय किया उसके प्रति नहीं। जब उसने भगवान को कहा मैं दोनों सेनाओं को देखना चाहता हूं, कौरों की सेना देखने के बाद जब मुंह मोड़ता है और अपनी सेना को देखता है, तो उसमें उसको अपने पुत्र नजर आए, मेरे पुत्र सारे खड़े हैं। और उसको उस समय स्मरण हो गया कि जब द्रौपदी ने भगवान से पूछा कि ये युद्ध का परिणाम क्या होगा, तो उस समय भगवान ने कहा 5 पांडव सुरक्षित रहेंगे, ये मेरी गारंटी है। तब द्रौपदी ने पूछा, मेरे पुत्र का पुत्रों की गारंटी मैं नहीं ले सकता हूं। ये बात अर्जुन को मालूम थी कि भगवान ने हमारी गारंटी ली है लेकिन मेरे पुत्रों की गारंटी नहीं ली है। और वो जानता था कि कौरव हमें नहीं मार सकेंगे तो पुत्रों पर अटैक जरूर करेंगे, और इस युद्ध में अगर पुत्रों को ही खो दिया तो फिर राज्य गद्दी प्राप्त भी हो गई तो क्या उसका सुख हम भोग सकेंगे, या हर वक्त हमारा मन कचोटता रहेगा कि ये गद्दी प्राप्त करने के लिए हमने अपने बच्चों की बलि चढ़ाई है, तो उसका आनंद तो मिलेगा नहीं। तो पुत्र मोह जागृत हो गया, इसलिए उसने शस्त्र छोड़ दिया। और शस्त्र छोड़ने के बाद भगवान उसको ज्ञान देने लगते हैं। क्या ज्ञान दिया? तो सबसे पहले आत्मा का ज्ञान दिया। आत्मा कैसे अजर अमर अविनाशी है, शाश्वतता उसकी बताई गई, और उसके साथ साथ स्वधर्म का परिचय दिया गया कि हे अर्जुन, स्वधर्म को देख करके भी तू युद्ध करने के लिए सक्षम है, तुम्हें युद्ध के मैदान से भागना नहीं चाहिए, इतनी शक्ति है, क्षमता है। तो कई बार कई लोग हमें क्या समझाते कि स्वधर्म माना, कहते उसको क्षत्रिय धर्म की याद दिलाई। तो क्या गीता का ज्ञान खाली क्षत्रियों के लिए है? नहीं, गीता का ज्ञान सारी मानव जाति के लिए है। तो मनुष्य जीवन का स्वधर्म क्या है? और जब ये कहा स्वधर्म सुख देता है, पर धर्म दुख देता है, तो स्वधर्म यानी आत्मा के साथ गुण, और पर धर्म माना काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष छल कपट आलस भय स्वार्थ, ये पर धर्म है, ये दुख का कारण है। स्वधर्म सुख का आधार है। तो आत्मा की शाश्वतता के साथ साथ उसका स्वधर्म क्या है ये भी बताया। और कहा जाता है कि गीता को 3 भागों में अगर बांट दिया जाता है, एक है ज्ञान योग, जहां ज्ञान की बातें स्पष्ट किया है, जैसे आत्मा की परमात्मा की ज्ञान की बातों को स्पष्ट किया है। दूसरा है कर्म योग, कि उसका व्यवहारिक स्वरूप कैसे कर्म में अप्लाई करना है, ये बातें स्पष्ट की गई है, और कर्म में उसको कैसे ले आना है। और तीसरा है भक्ति योग, माने ईश्वर के साथ मन को एकाग्र कैसे करना है, ज्ञान को कर्म में अप्लाई करते हुए ईश्वर के तरफ मन को एकाग्र करना, ये विधि बताई है। और तब भगवान ने 4th अध्याय में कहा कि हे अर्जुन, यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब धर्म की अति ग्लानी होती है तब तब मैं इस संसार में आता हूं, अधर्म का नाश और सत धर्म की पुनर्स्थापना करता हूं। तो गीता का ज्ञान कब दिया जाना चाहिए, कब दिया होगा कब दिया होगा? अधर्म जब अति में था। तो अधर्म अति में कब था? यही समय है सतयुग के अंदर। सतयुग त्रेतायुग, जिसको स्वर्गीय समय कहा जाता है, जहां के लिए तो भारत का गायन है, सोने की चिड़िया थी, जहां पर शेर और गाय एक घाट पर पानी पीते थे, इतने हिंसा थी, जहां प्रकृति के अंदर इतनी सतोप्रधानता सात्विकता थी, तो वहां तो गीता ज्ञान की आवश्यकता ही नहीं है। क्योंकि वहां अधर्म ही नहीं है। द्वापर में तो अधर्म आरंभ होता है और द्वापर के अंत में ही अगर भगवान आ जाए और गीता का ज्ञान दे तो अधर्म का नाश और सत धर्म की स्थापना की माना सतयुग की स्थापना होनी चाहिए, फिर कलयुग आना ही नहीं चाहिए। तो क्या गीता के ज्ञान से घोर अधर्म के युग की स्थापना हुई? नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि अधर्म का तो नाश किया, सत धर्म की स्थापना की भगवान ने। तो कब दिया होना चाहिए? जरूर घोर अधर्म का समय तो कलयुग का अंत है, तो इसी समय देना चाहिए, तभी तो सतयुग की स्थापना हो। तो कितनी बार भगवान को आना चाहिए? गीता के अंदर लिखा है यदा यदा ही धर्मस्य, फिर लिखा है ऐसे युगे युगे। तो कितनी बार आना चाहिए भगवान को? एक बार आना चाहिए अधर्म के समय पर ही, एक बार आना चाहिए, या युगे युगे कहे तो चार युग है तो चार बार आना चाहिए, है ना? तो 10 अवतार दिखा दिए। अच्छा, 10 अवतार से भी पेट नहीं भरा तो 24 अवतार दिखा दिए। वहां भी अगर सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ तो कण कण में भगवान ने कह दिया, सर्वव्यापी है ही है, आने की जरूरत ही नहीं। अब हमें सबसे पहले तो ये फैसला करना होगा अपने विवेक से कि भगवान एक बार आता है, चार बार आता है, 10 बार आता है, 24 बार आता है ही है, आने की जरूरत ही नहीं। क्या कहेंगे? आपका विवेक क्या कहता है? एक बार ही आना चाहिए, है ही है। अगर है ही है फिर तो आने की जरूरत ही नहीं ना। तो गीता के महावाक्य झूठे हैं, जो भगवान ने वायदा दिया कि मैं अधर्म के समय पर आता हूं, तो ये वायदा तो झूठा हो गया। क्या कहेंगे? अगर हरेक के अंदर भगवान है फिर तो अधर्म होना ही नहीं चाहिए ना। तो इधर इतना अधर्म क्यों माना? क्या भगवान की शक्ति नहीं है? आज आपके घर में अगर बच्चा गलत काम कर रहा हो, आप बच्चों को टोकेंगे या सोचेंगे जाने दो, करने दो उसको? क्या करेंगे? टोकेंगे ना। तो भगवान अगर हरेक के अंदर बैठा है, मनुष्य इतना गलत काम कर रहा है, वो सर्वशक्तिमान दया का सागर, प्रेम का सागर है, तो क्या उसके पास इतनी शक्ति नहीं है जो मनुष्य को रोक सके? इतनी शक्ति नहीं है? है तो क्यों नहीं रोक रहा है फिर? डबल बातें तो नहीं करो ना, एक बात करो, एक बात करो। या तो गीता के ये महावाक्य झूठे हैं, यदा यदा ही धर्मस्य। भगवान ने गीता में ही कहा है मैं हरेक के हृदय में वास करता हूं, ये कहा है ना भगवान ने। लेकिन उसका भाव क्या है? आज आपका अपने बच्चे से बहुत प्यार है, वो कहीं विदेश में गया, फोन करता है, मुझे आपकी याद आ रही है, वापस आना चाहता हूं, आप क्या कहते हो? बेटा हम तो तेरे दिल में बैठे हैं, हम तो तेरे साथ ही है। कहेंगे नहीं, कोई फिजिकली साथ रहने की बात नहीं है, अरे तू हमारे दिल में बैठा हुआ है, हमारे दिल में समाया हुआ है। तो फिजिकली वो आ गया क्या? भावार्थ ये है कि हमारे दिल में आपकी याद समाई हुई है। तो भगवान भी गीता में कहता है मैं हरेक के हृदय में रहता हूं, माना भगवान की याद कलयुग में हरेक के हृदय में है या नहीं है? है ही? तभी तो पुकारते हैं कि हे प्रभु आओ आओ। लेकिन जब कोई कोई बात बताता है मालूम नहीं होता है तो हम क्या कहते हैं? ऊपर वाला जाने, जो छोड़ो ना। कभी जिंदगी में ये कहा नीचे वाला जाने? तेरे अंदर मेरे अंदर जो बैठा है वो जाने, कहा कभी? नहीं कहते। तो वो नहीं है ना, फिजिकली नहीं है। उसकी याद हमारे दिल में समाई हुई है, क्योंकि हर इंसान दुख का अनुभव करता है, तो किसको याद करे किसको याद करे, तो भगवान को याद करता है। इसीलिए कहते हैं भगवान की याद हमारे दिल में है। लेकिन फिर भी जब अधर्म का समय होता है तो वो आता है। अच्छा, आएगा तो किस रूप में आएगा? अगर श्री कृष्ण के रूप में आ जाए फिर तो लोग उसको काम करने देंगे, अधर्म का नाश, सद्धर्म की स्थापना का, या सेल्फी के लिए पहुंच जाएंगे। क्या करेंगे भाई? सब काम छोड़ो तुम अपना, मेरे साथ एक सेल्फी जरूर होनी चाहिए। क्या कहेंगे? काम नहीं करने देंगे। इसीलिए भगवान ने सातवें अध्याय में कहा, मैं अति साधारण रूप में आता हूं, अति साधारण रूप में, जिस कारण मूढ़मति मनुष्य मुझे पहचानते नहीं, और कोटों में कोई में भी कोई विरला मेरे यथार्थ स्वरूप को जानकर पहचान कर मेरी शरण को ग्रहण करता है। अति साधारण रूप, अति साधारण रूप कौन सा है? नर स्वरूप। और इसीलिए भारत में कहावत है, नर ऐसी करनी करे जो नर नारायण बने, नारी ऐसी करनी करे जो श्री लक्ष्मी बने। तो वही नारायण का जो नर स्वरूप है, वही श्री कृष्ण का जो नर स्वरूप है, उसमें परमात्मा अवतरित होते हैं। और अवतरित होकर के अधर्म का नाश और सत धर्म की पुनः स्थापना का गुप्त रूप में कार्य करते हैं, जो बहुत लोग नहीं पहचान पाते हैं। जो पहचानते हैं वो उसके मददगार बन जाते हैं, सेल्फी के लिए नहीं आते, वो उसके मददगार बन जाते हैं। आपने पहचाना कि नहीं पहचाना? पहचाना कि नहीं पहचाना? अरे गर्व होना चाहिए, सिंध में आया भगवान, एक साधारण मनुष्य तन का आधार लिया। हाँ, लेकिन फिर भी अगर सिंध वालों ने ही नहीं पहचाना तो क्या कहेंगे? भाग्यशाली कहेंगे या? अच्छा, इसलिए नहीं पहचानते हैं। अरे भगवान आया है, अपना कार्य कर रहा है, अब जाने का समय आ गया है। अभी भी अगर नहीं पहचानेंगे तो कब पहचानेंगे? समझा? तो इसीलिए कोटों में कोई में भी कोई, तो मैं उस कोटों में कोई में तो आ जाऊं, है ना? आ जाएंगे या नहीं आ जाएंगे? या अभी भी समझते भगवान सब जगह है इसलिए जानने की जरूरत ही नहीं है? क्या कहेंगे? जानना है ना, और उसका मददगार बनना है या नहीं बनना है? जरूर बनना है। जो मददगार बनता है भाग्यशाली है। हाँ, क्या मदद कर सकते हैं, है ना? बहुत मदद कर सकते हैं। अरे किसी को रास्ता भी दिखा दिया कि भगवान ये जगह पर आया है, रास्ता दिखाने का भी पुण्य बहुत बड़ा है, है ना? संदेश देने का कार्य, उसमें मददगार बन सकते हैं। अरे जिस भी रूप से मददगार बनना चाहे बन सकते हैं। ठीक है? अच्छा, ओम शांति।